शक्तिकोटि सूर्यरण्णु मीरिदे मत्तो यार दिव्य ध्वनियु लोकहितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕೀ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನ ಔರ್ ಚಾರಿತ್ರ ಕಾ मूल है दंशन मूलो धम्मो। दर्शन धर्म का मूल है। फिर धर्म क्या है? धर्म तो चारित्र है। धर्म क्या है? चारित्र ही धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो। वस्तुतः धर्म तो चारित्र ही है, क्योंकि चारित्र की पूर्णता से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चारित्र पूर्ण न हो तो मोक्ष होता नहीं। इसलिए दर्शन और ज्ञान ये मोक्ष के कारण नहीं है। यदि इनको मोक्ष का कारण मानते तो चारित्र को हटा के देख लो। चारित्र को हटा दो और दर्शन ज्ञान दोनों रखो, या दर्शन अकेला रखो, ऐसा रख नहीं सकते, क्योंकि दर्शन के साथ ज्ञान होता ही है। जहां सम्यक दर्शन है वहां पर सम्यक ज्ञान का होना अनिवार्य ही है। तो दोनों को रखना पड़ता है। दोनों को रखो, चारित्र को हटा दो, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो धर्म निर्वाण का कारण है। कौन सा धर्म? चारित्र धर्म। इसलिए चारित्रम खलु धम्मो इस प्रकार उपदेश दिया गया। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तविक धर्म है। और सम्यक दर्शन क्या है? मूल है। किसका मूल? धर्म का मूल। धर्म क्या है? चारित्र है। उस धर्म का मूल क्या है? सम्यक दर्शन। यूं समझो इसको। धर्म का जो कारण होता है उसको भी धर्म कहना पड़ता है, आरोपित होता है उसमें। चारित्र से यदि साक्षात निर्वाण की प्राप्ति होती है तो चारित्र वस्तुतः मूल वास्तविक धर्म है। कर्मों की निर्जरा, कर्मों का संवर, संवर हुए बिना निर्जरा संभव नहीं। संवर तो करना ही है। तो संवर किस किस से होता है? सम्यक दर्शन से संवर हुआ 41 का। सम्यक दर्शन संवर का कारण, ठीक है। ज्ञान, ज्ञान से भी संवर हुआ 41 का। ज्ञान संवर का कारण, ठीक है। निर्जरा के लिए क्या लाना पड़ेगा? और निर्जरा के बिना मोक्ष होता नहीं। पूर्व में बंधे हुए कर्मों का हम खाली करना चाहते हैं, आत्मा को रिक्त करना चाहते हैं, खाली करना चाहते हैं, तो क्या लाना पड़ेगा अपने को? चारित्र लाना पड़ेगा। तो चारित्र लाने के बाद ही तप आएगा। चारित्र पूर्वक तप को स्वीकार करना ये कर्म निर्जरा का कारण है। चारित्र पूर्वक तप होना चाहिए, संयम पूर्वक तप होना चाहिए। ये मेन सूत्र है। संयम न हो और तप ग्रहण कर लिया संयम तो मूल गुण है और चारित्र तप उत्तर गुण है। जो उत्तर गुणों को धारण करता है और मूल गुण को धारण करना नहीं चाहता उसकी निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि चारित्र संवर का कारण और तप निर्जरा का कारण। संवर के कारणों को अपनाए बिना निर्जरा के कारण को अपनाना व्यर्थ है। कर्मों को रोका ही नहीं और निर्जरा करने लगे। निर्जरा अवश्य होती है, नहीं होती ऐसी बात नहीं, किंतु किस प्रकार निर्जरा होगी? आश्रव पूर्वक निर्जरा होगी, यानी कि जितना कर्मों को हमने खाली कर दिया बाद में उतने ही आकर के बैठ गए। तो कर्म न आए इसके लिए क्या चाहिए? संवर तो चाहिए। संवर के लिए क्या चाहिए? चारित्र चाहिए। चारित्र यानी संयम, देश संयम, सकल संयम, जिसके आप लोग आजकल इच्छा कर रहे हैं ना कि प्रतिमाधारी हम भी बने, वो कितनी बड़ी बात है। लेकिन थोड़ा सा प्रमाद छोड़ना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तब संवर होता है। संवर के बाद आप तप करें, उपवास इत्यादि छह प्रकार के बहिरंग तप और अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति इत्यादि, ये अंतरंग तप हैं। ये उपवास आदि करना कब सार्थक माना जाता है? कम से कम प्रतिमा तो धारण कर लो। चारित्र देश संयम, देश संयम के साथ भी आप कर सकते हैं तपों को, एक देश तप तप सकते हैं, संवर का कारण है। उपवास यदि तप है तो प्रतिमा आपका संयम है। तो संयम धारण किए बिना क्या उपवास आदि करें? चतुर्थ गुण स्थान में रहकर अविरत सम्यक दृष्टि बनकर असंयम दशा को धारण करके करें क्या? कर सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं, अभ्यास हो जाएगा, बिल्कुल मत छोड़ो, करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वह निर्जरा की कोटि में नहीं आ सकता, क्योंकि जितने कर्म आ रहे हैं उतने आ रहे हैं और जितने जा रहे हैं उतने जा रहे हैं। आना भी शुरू है, जाना भी शुरू है। तो इस प्रकार के तप से कभी भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए आचार्यों को, भगवंतों को, तीर्थंकरों को कहना पड़ा कि चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र संवर का कारण है, चारित्र को अपनाओ। चारित्र संवर कराता है, तप निर्जरा कराता है। ये कार्य तो अरहंत भगवंतों को भी करना पड़ता है। अरहंत भगवान चारित्रवान है क्या? नहीं। कौन सा चारित्र है उनके पास? यथाख्यात चारित्र है, वो संवर का कारण। परंतु निर्जरा के कारण को भी वे अपनाते हैं क्या? नहीं अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? तप अपनाते हैं। कौन सा तप है? अंतरंग तप। अनंतरंग तप क्या अपनाते हैं? वो उपवास आदि तो करते नहीं अरहंत भगवान, क्योंकि वो भूख प्यास से मुक्त हैं। बहिरंग तपों की उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश इत्यादि, ये तप मुनि अवस्था में आवश्यक हैं। किंतु अरहंत भगवान बनने के बाद भी अंतरंग तप होता है, तो अंतरंग तप को तो अपनाते ही हैं। कौन सा तप अपनाते हैं देख लो? ध्यान। चारित्र उनका संवर का कारण, उनका चारित्र उनको संवर का कारण। किंतु चारित्र को तो अपना लिया किंतु ध्यान नहीं अपना रहे हैं। तो आघाती कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकते। अगर यथा क्या चारित्रवान नहीं बनते तो आघाती कर्म भी नष्ट नहीं होते। आघाती कर्मों को संवर करना है, आने वाले कर्मों को रोकना है, इसलिए यथा क्या चारित्र को अपनाया। यथा क्या चारित्र को अपनाने के बाद कितने कर्मों का संवर हो गया, कषाय का नाश करते ही 12वें गुणस्थान में पहुंच गए 10वें से। कौन सा चारित्र प्रकट हुआ वहां? यथा क्या चारित्र। तो यह यथा क्या चारित्र, कषाय संबंधित जो कर्म आते थे वो कितने आते थे, एक बार लिखा था, नोट किया था, कषाय से कितने, प्रमाद से कितने, अग्रति से कितने, मिथ्यात्व से कितने, ध्यान में आया? कषाय से 58, बिल्कुल ठीक है, कषाय से 58 प्रकृतियों का आश्रय होता था। इन 58 प्रकृति को रोकने के लिए कौन सा चारित्र अपनाना पड़ेगा हमको? यथा क्या चारित्र, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र को अपनाते हैं। चारित्र को अपनाया तो ये 58 प्रकृतियों के संवर का कारण बना। अब ये 58 तक रुक गए, पहले कितने रुके थे? 41, फिर बाद में 10, फिर 4, फिर 6, फिर 58, 5 स्टेप में है, ध्यान रखना। 41 यह अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व से मिल करके 41, और 10 ये अप्रत्याख्यान आवरण संबंधी, और 26 जो है, नहीं 4 जो है ये प्रत्याख्यान संबंधी, और 6 जो है ये प्रमाद संबंधी, और कषाय संबंधी 58। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतव। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये 5 आश्रव और बंध के कारण हैं, ये बंध के हेतु हैं। तो ये जो कर्म आ रहे थे 58 प्रकार के, किस वजह से आ रहे थे? हमारे पास चारित्र नहीं था अभी भी। कौन सा चारित्र था? सूक्ष्म सांप्राय चारित्र तो था, छेदोपस्थापना चारित्र था, लेकिन ये सब नीचे के चारित्र हैं, तो ये चारित्र की पूर्णता नहीं। चारित्र में भी विकास जरूरी है। तो कर्मों के संपूर्ण संवर के लिए क्या अपनाना पड़ेगा? चारित्र ही अपनाना पड़ेगा। चारित्र कुछ कर्मों का संवर देश संयम से होता है, कुछ कर्मों का संवर सकल संयम से होता है, कुछ कर्मों का संवर यथा क्या चारित्र से, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र से, इत्यादि ऊपर के चारित्रों से होता है। इस प्रकार संवर होता जाता है चारित्र से, और तप से क्या होता जाता है, निर्जरा होती जाती है। किन कर्मों की निर्जरा होती है? जो बंधे हैं उनकी, या जो बंध रहे हैं उनकी? देखो, जो बंध रहे हैं वो तो आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और समय पर उदय आकर के फल दे करके भी जा रहे हैं, उनकी क्या निर्जरा करेंगे हम? संवर पूर्वक जिनकी हम निर्जरा करते हैं वो खाली होते हैं, वो बंधते नहीं नए और खाली भी होते हैं। इसलिए निर्जरा कैसी होनी चाहिए? संवर पूर्वक निर्जरा होना चाहिए, संवर पूर्वक निर्जरा, हाँ, तो ही कर्म कम होंगे। जो आ रहे हैं और समय पर फल देकर के जा रहे हैं, जाना भी निर्जरा है, एक सविपाक निर्जरा है और एक अविपाक निर्जरा है, तो आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो उनकी नहीं, असली निर्जरा तो वो है जो संवर पूर्वक निर्जरा हो रही है, उससे ही आत्मा खाली होने वाला है। ऐसी निर्जरा को अपनाने के लिए केवल सम्यक दर्शन प्राप्त करने से काम चलने वाला नहीं है। चौथे गुणस्थान में ही बैठेंगे और चारित्र की उपेक्षा करेंगे, ऐसा भी काम चलने वाला नहीं है। चारित्र की ओर बढ़ना ही पड़ेगा, आज न कल बढ़ना पड़ेगा। आज बढ़ो या कल बढ़ो, कल बढ़े तो भी बढ़ना पड़ेगा और आज बढ़े तो भी बढ़ना पड़ेगा। संवर पूर्वक निर्जरा करना ही मोक्ष मार्ग कहलाता है। आश्रव पूर्वक निर्जरा करना तो एक अभवी जीव भी निर्ग्रंथ दीक्षा लेकर बाह्य द्रव्य संयम को धारण कर सम्यक दर्शन तक को ग्रहण नहीं करता, जो कि संवर का कारण है, और चारित्र को भी ग्रहण नहीं करता, जो कि संवर का कारण है। अभवी पहले गुणस्थान में रह करके तपस्या करता है, तपस्या करता है, दीर्घ मासोपवासी भी बनता है और अनंतानुबंधी कषाय को भी मंद रखता है, तो भी उसकी निर्जरा नहीं हो रही। निर्जरा तो हो रही है, लेकिन क्या नहीं है? संवर नहीं है। और इतनी निर्जरा स्पीड है, उतनी स्पीड तो एक भव्य जीव भी निर्जरा नहीं कर सकता। देखो, तप तो तप है, अग्नि को आप नीचे से जलाओगे, उसमें फोर्स है तो पानी भी फोर्स उबलेगा, क्योंकि अग्नि में ताकत है पानी को उबालने की, फोर्स उबलेगा। वो जितने जोर से आग का वो करोगे, गैस छोड़ोगे, मंद रखोगे मंद उबलेगा, ज्यादा करोगे तो ज्यादा उबलेगा। लेकिन क्या फायदा? वो जितना उबाल रहा है ना, उबाल के निकाल रहा है ना, उतना उतना निकाल दिया और उतने ही कर्म आकर के और स्टॉक हो गए। किसके अभाव में ये हो रहा है? एक ऐसा सम्यक दर्शन भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है, जो संवर के कारण। सम्यक दर्शन 41 का संवर कराता है, लेकिन चारित्र शेष सभी कर्मों का संवर कराता है। 120 तो आश्रव के योग्य, बंद के योग्य हैं, तो 120 में से 41 निकालो, कितने बच गए? 79। तो संवर कराने की शक्ति चारित्र में अधिक है और सम्यक दर्शन में कम है। सम्यक दर्शन से तो 41 का संवर हो रहा है, चारित्र से कितने का संवर हो रहा है? 79 की। फिर उसका महत्व तो है, उसकी भूमिका तो बहुत बड़ी भूमिका है संवर कराने में। और इस प्रकार से दोनों, सम्यक दर्शन और चारित्र को, दोनों को अपनाते हुए फिर तप का हम अनुसरण करेंगे तो उससे खूब निर्जरा होगी, खूब निर्जरा होगी। अंतरंग तप भी करना पड़ेगा, बहिरंग तप भी। बहिरंग तप अंतरंग तप के साधक होते, साधक, और वो साध्य है। अपन ने उपवास किया, किस लिए किया ये सोचो। एकासन किया, किस लिए किया ये सोचो। अंतरंग तप की सिद्धि के लिए किया। अंतरंग तप क्या है? ध्यान। उपवास करने के बाद ध्यान में मन लग रहा हो तो बाहर करना वो सार्थक है, और उपवास करने से तो ध्यान ही बिगड़ रहा है, या ध्यान करते ही नहीं तो उपवास करना निरर्थक है। ज्ञान के बिना कुछ करना बहुत व्यर्थ है। समझे बिना कुछ करने के लिए निकलते हैं तो डॉक्टरेट हुए बिना इंजेक्शन लेके खड़े हो गए ऑपरेशन के अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हो गए, किसी के पेट पेट चीरोगे तो जोड़ना तो मालूम नहीं है। आप उपवास करके क्या कर रहे हैं? उपवास करो, ज्ञान से करो, समझ के करो, किसके लिए कर रहा हूं, मुझे क्या करना है। बहुत सोच सोच करके कदम रखना पड़ता है। थोड़ा करो, थोड़ा उपवास भी संपूर्ण कर्म की निर्जरा के लिए ही कारण बने और संवर पूर्वक बने, इसके लिए करो। बहिरंग तप तपना अज्ञानी जीवों के लिए भी संभव है। ज्ञानी तो तपता ही है, किंतु अज्ञानी जीवों के लिए भी संभव है। किंतु अंतरंग तप के साथ बहिरंग तप करना यह अज्ञानियों को संभव ही नहीं, ज्ञानियों को संभव है। क्यों? अज्ञानी विवेक से कोई भी काम करता ही नहीं, वो करना है इसलिए करता है, अनुसरण करके करता है। या तो उनको उसमें आनंद आ रहा है, या तो बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए करता है। अच्छा लग सकता है उपवास करना, किसी को अच्छा लग भी सकता, अज्ञान अवस्था में नहीं लगता, लग सकता है। अज्ञान अवस्था में अच्छा लग सकता है, क्योंकि उपवास करने में बहुत हमको जरा अच्छा लगा इसलिए किया, तो इससे कर्म निर्जरा हुई क्या? कर्म निर्जरा का कारण समझकर उपवास करना और कर्म निर्जरा के कारण को समझे बिना उपवास करना, यह अलग बात है। ज्ञानी कर्म निर्जरा के लिए, ध्यान सिद्धि के लिए उपवास करता है। मुझे अंतरंग तप को सिद्ध करना है, मुझे उपवास करके ध्यान में बैठना, ध्यान सिद्धि के लिए उपवास करता। और उपवास शब्द भी तो देखो कैसा है, वो उप यानि निकट, वास यानि रहना, अपने निकट ही रहना, यानी भोजन की तरफ नहीं जाना, इसका नाम उपवास है। उपवास है, उपवास अलग बात है और अनशन अलग बात है। देखो, बहिरंग तप का नाम उपवास क्यों नहीं रखा? नाम रख सकते थे, उपवास, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, इस प्रकार नाम रख सकते थे। अनशन रखा, अनशन, अशन यानी भोजन, आहार, अनशन यानी भोजन के बिना रहना। भोजन के बिना रहना तो बहिरंग तप है, लेकिन उपवास करना यह अंतरंग तप है। उपवास अंतरंग तप है और अनशन बहिरंग तप है। आपने अनशन कर लिया, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आपने उपवास कर लिया। चार प्रकार के आहार को त्याग करने का नाम अनशन है, अनशन कहा है। ये तो बहिरंग तप के तप का नाम है और तप बहिरंग तप के कोटि में आया। अब इसके पास उपवास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये अलग बात है। उप यानी निकट, निकटता में वास करना, भोजन के तरफ नहीं जाना, भोजन का चिंतन नहीं करना, उसमें उपयोग को नहीं ले जाना, आत्मा में अपने ज्ञानोपयोग को लगा के रखना, ये ध्यान है। ध्यान में बैठना, उपवास करने का मतलब ध्यान में बैठना, ये उपवास है। जो निकट था वो उसमें जाकर के बैठ गए। निकट कौन था? आत्मा, आत्मा के कुटिया में जाकर के बैठ गए, ये उपवास है। चार प्रकार का आहार तो त्याग कर दिया 24 घंटे के लिए। भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, भगवान 24 घंटा हम भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान मौन से पूछ रहे थे, किस लिए? ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने उनको कुछ नहीं कहा, भगवान मुझे मजा आ रहा है उपवास में। मजा क्यों आ रहा है? किस कारण से? उद्देश्य क्या है? ध्येय क्या है? लक्ष्य क्या है उसका? उसका हेतु क्या है? ये तो बताओ। हमने नहीं बताया, क्योंकि उनका मौन प्रश्न हमें समझ में ही नहीं आया। वो पूछ रहे थे मौन से, उनका मौन प्रश्न हमको समझ में ही नहीं आया और हम वहां से निकल गए। और क्यों उपवास किया? कि अष्टमी था इसलिए उपवास किया। अरे, अष्टमी को निमित्त बनाकर के उपवास किया और कोई लक्ष्य नहीं। चतुर्दशी था इसलिए उपवास किया। तो ऐसा क्यों नियम ले रखा है कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन मुझे उपवास करना है, उसको निमित्त बना करके? तो काल द्रव्य को व्यवहार सुनो, तो व्यवहार काल को निमित्त बना करके उपवास किया। तो अष्टमी देखो, सुनो तो सही क्या बोल रहे, बीच में मत बोलो। अष्टमी चतुर्दशी ये क्या है, काल द्रव्य क्या? नहीं, कौन सा काल द्रव्य? व्यवहार काल द्रव्य। इस आज अष्टमी था इसलिए कर दिया, इतना कहने वाले भी रहते हैं कि नहीं? उसके उस अष्टमी और चतुर्दशी को छोड़कर अन्य कोई उद्देश्य नहीं हमारा। करते हैं कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? और फिर बाद में पूछे, तुमने अष्टमी के दिन ही क्यों किया? तो उसका भी कारण अधिक से अधिक वो यही बताते हैं कि हमारे कुल परंपरा में ऐसा चलता था। हमारे माँ बाप भी अष्टमी चतुर्दशी के दिन हमेशा उपवास करते थे और वो जैन थे। ऐसा चलता है कि नहीं? तो काल द्रव्य को निमित्त बना करके आपने उपवास किया, आपको मिला क्या? कुछ नहीं मिला, व्यर्थ हो गया वो उपवास। तत्वों का ज्ञान नहीं, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है, कर्मों का बंध क्या है, निर्जरा क्या है, इसका ज्ञान नहीं, और अष्टमी चतुर्दशी को उपवास का नियम लिया है। तो ये अज्ञान पूर्वक तप कहलाता है, बहिरंग तप। ये अज्ञान तप कर्म निर्जरा का कारण नहीं बनता। कोई अष्टमी को निमित्त बना करके उपवास करता है, कोई शरीर को निमित्त बना करके उपवास करता है। उपवास करने से शरीर स्वस्थ रहता है इसलिए मैं करता हूं, तो निर्जरा का कारण बनेगा? उपवास तो निस्वार्थ किया जाता है। निस्वार्थ का मतलब न शरीर के दृष्टिकोण से, न मानसिक आनंद आता है इस दृष्टिकोण से, न देखा देखी, न रूढ़िवादी बनकर परंपरा का निर्वाह करने के लिए उपवास करना, देखा देखी करना, कंपटीशन में करना, होता है कि नहीं होता है? ये सब व्यर्थ जा रहे हैं कि नहीं? करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन व्यर्थ क्यों गमा रहे हैं? उसको सार्थक बना सकते हैं ना? उपवास करना ही चाहिए, करना व्यर्थ नहीं है, लेकिन सार्थक बनाओ उनको। कर्म निर्जरा तो कम से कम हो जाएगी और निर्वाण की उपलब्धि होगी आज न कल। कर्म तो कम होंगे, कर्मों का भार उतर जाएगा। तो उपवास क्यों करो? ध्यान की सिद्धि के लिए। उपवास के दिन ध्यान करना है। आचार्यों ने ये कला सिखाई कि उपवास के दिन क्या करना। उपवास के दिन कोई भी आरंभ सारंभ आदि क्रिया नहीं करना, ये चारित्र हुआ अभ्यास के रूप में। आरंभ सारंभ आदि काम मत करो, असंयम के काम है वो, जीव हिंसा होती है। व्यापार उद्योग सब रोक दो एक दिन के लिए, जिस दिन उपवास कर रहे हैं वो चारित्र है, वो संयम है। हिंसा से बचना संयम, आरंभ सारंभ आदि इत्यादि कार्यों से बचना संयम है, चारित्र है। चारित्र लिया तो नहीं है, लेकिन अभ्यास के रूप में कम से कम अभ्यास कर रहे हैं। तो उस दिन ऐसा अभ्यास करो कि उपवास को तो अपना लिया है, तो आरंभ सारंभ भी मत करो। आरंभ सारंभ करना आश्रव का कारण, पापाश्रव का कारण। फिर वो उपवास किस काम का? वो सही अभ्यास नहीं हुआ। अभ्यास का मतलब संवर के कारणों को भी अपना लो, तप के कारण को भी अपना लो। तप का कारण उपवास हो गया, अनशन हो गया और समर का कारण ध्यान चारित्र हो गया। ध्यान भी तप है, अनशन भी तप है, अनशन बहिरंग तप है, ध्यान अंतरंग तप है, चारित्र समर का कारण है। तो इनको एक साथ ले लो, करना ही है, अच्छा करना है, निर्वाण की उपलब्धि की हेतु करना है, तो तीनों को अपनाओ। एक दिन अपनाओ, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए। अभ्यास भी करना है तो एक आध दिन करो, ऐसा करो, निर्दोष करो। एक दिन कर लिया, एक दिन किया तो उसकी पूरी अनुभूति मिल गई आपको, आनंद आया, तो कल के दिन की शिक्षा मिली। मैं जिस दिन मुनि बनूंगा, चारित्र धारण करूंगा, वास्तविक संवर का कारण मेरे पास उपलब्ध रहेगा, और उस दिन जो अनशन करूंगा वो मेरे लिए कर्म की निर्जरा का कारण बनेगा। ध्यान कर्म निर्जरा का कारण। और उपवास क्यों करना? ध्यान सिद्धि के लिए। एकासन क्यों करना? ध्यान सिद्धि के लिए। उनोदर क्यों करना? ध्यान सिद्धि के लिए। रस परित्याग क्यों करना? ध्यान सिद्धि के लिए। वृत्ति परिसंख्यान क्यों करना? ध्यान सिद्धि के लिए। केवल एक अंतरंग तप की सिद्धि के लिए ही सब कुछ किया जाता है। बहिरंग अनुष्ठान जितने भी होते हैं, अंतरंग ध्यान की सिद्धि के लिए है, और इनसे एकाग्रता बढ़ती है। उपवास से एकाग्रता बढ़ती है, एकासन से एकाग्रता बढ़ती है, कम खाने से एकाग्रता बढ़ती है। ज्यादा खाओगे, 3 बार खाओगे तो ध्यान की सिद्धि नहीं होगी, पेट में गैस बढ़ेगा, पेट वजनदार रहेगा, शरीर में भारीपन महसूस होगा, तो सामायिक में मन नहीं लगेगा। सामायिक करना ध्यान करना है, ध्यान करने में मन नहीं लगेगा। भगवंतों ने जैसी व्यवस्था बना करके दी है, उस व्यवस्था को कम से कम अपन पहले समझे, फिर समझने के बाद थोड़ा ही करे उसमें से, लेकिन प्योर करे, क्वालिटी रहे उसमें। उस क्वालिटी के कारण से क्या होता है? ज्ञानी के छिन्न महाय त्रिगुप्तिते सहज टरेते। ज्ञानी जीव के एक क्षण मात्र में जो कर्मों की निर्जरा होती है, वो अज्ञानी जीव करोड़ों भवों में करोड़ बार भी तप करता है तो भी कर्म की निर्जरा नहीं होती। ज्ञानी की ज्ञान की महिमा अलग ही है, क्वालिटी है ना। वो एक ही क्षण किया लेकिन एकदम से निकाल दिया, एक साथ लड़ी के लड़ी निकल गए कर्मों की। ज्ञानी के छिन्न माय त्रिगुप्ते सहज तरे ते, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। ज्ञानी के छिन्न माय, एक भी कोई धार्मिक कार्य करने से पहले उस कार्य के संबंध में डिटेल अध्ययन करो, इसलिए स्वाध्याय करो। आप क्या करते हैं? या तो पूजा करने के लिए दौड़ते हैं, या तो उसको भी नहीं करते। उसको भी केवल 10 लक्षण में 10 दिन पूजा कर लिया तो अगले साल ही आएंगे। अब ऐसे भी जीव हैं। आप बाह्य अनुष्ठान करने के लिए बहुत जल्दी दौड़ते हैं, पर ये बाह्य अनुष्ठान क्या है इसका अध्ययन करने के लिए टाइम नहीं देते। और देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बाह्य अनुष्ठान थोड़ा भी करे तो एकदम प्योर हो, ज्ञान के साथ हो, तो एग्जैक्ट वो 1 सेकंड में कई गुणित कर्म की निर्जरा वो करा सकता है। ज्ञानी के छिन्न माय त्रिगुप्त ते सहज करे थे। थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करने का अभ्यास करो। महाराज टाइम नहीं मिलता, महाराज समझ में नहीं आता, ये बहाना मत बनाओ, उपेक्षा मत करो स्वाध्याय का। उपेक्षा करने से ज्ञान से वंचित रहना पड़ता है। ज्ञान से वंचित रह करके यदि हम कुछ भी बाह्य अनुष्ठान बाहर से करते हैं तो वो कर्म की निर्जरा का कारण नहीं बनता, और ये मनुष्य भव एक टल गया, यूं ही व्यर्थ गया, और अगला भी एक बार मिला तो क्या हो गया? उसमें भी ऐसा ही करेंगे, हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, वहां भी थोड़ा बहुत बाह्य अनुष्ठान किया, वो भी टल गया, ऐसे 8 भव चले गए, कहां जाना अब। अब चलो पुनः जहां से आए थे वहीं चलो। ज्ञान के लिए महत्व दो, ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान को आपको अनेक अनर्थों से बचाता है और मिले हुए इस मनुष्य भाव को सार्थक बना देता है, सार्थक बना करके आपको प्रस्तुत करता है सारे सुखों को। तो इसलिए ज्ञान को, स्वाध्याय को, चिंतन को, सत्संग को, प्रवचन को, इसको ज्यादा महत्व देना चाहिए। अच्छा है ना? देखो उपवास में प्रवचन सुनते समय आपको इतना इतना अच्छा आनंद आता है, क्यों आता है? क्योंकि ज्ञान को ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान को ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान भूखा था, प्यासा था, उसको कुछ मिल नहीं रहा था और एकदम से मिलने लगा तो उसको आनंद आने लगा। और उस ज्ञान को बाह्य अनुष्ठान दे दो, रुचिकर नहीं लगते, आनंद नहीं आया, सूखा सूखा सा लगा। वो तो है, इसलिए सत्संग। और नहीं 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 सुनाने से क्या हो रहा है, ये शास्त्र का विषय यहीं रहे, आगे नहीं बढ़ रहा है। अब इसमें बड़े कैसे? और इसमें से थोड़ा उठा करके कुछ शुरू कर देता हूं तो वो निकलता ही रहता है, क्योंकि ओरिजिनल परिस्थिति क्या है धर्म की, उसके सारे द्वारों को हम खोलना चाहते हैं। खोल करके रखेंगे तो ही आपको अच्छा लगेगा वो, और जो करना है वो व्यवस्थित रूप से कर सकेंगे। इसलिए बेसिक मजबूत करने के लिए हम जब चले जाते हैं तो शास्त्र यहीं पड़ा रहता है और होता रहता है वो विषय। द्वार तो खुल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या करने से क्या होता है, इतना नॉलेज भी हो तो कल के दिन कभी भी करें, हम कर सकते हैं, यथार्थ ही कर सकते हैं। जब भी कदम उठेगा यथार्थ उठेगा, वो बेसिक अच्छा हो। किस कार्य को करने से उसका फल क्या और कैसा करना चाहिए, कौन सा पहला करना चाहिए, सब कुछ छोड़ो लेकिन एक स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ेगा और स्वाध्याय करते करते सत्संग ज्यादा करो। स्वाध्याय कम करो लेकिन सत्संग ज्यादा करो। और कैसे सत्संग? जो जहां पर आत्मा की ही, तत्व की ही चर्चा होती है, आत्मा की ही बातें होती हैं, वहां सत्संग ज्यादा करो। सत्संग का तात्पर्य मैं ये नहीं कह रहा हूं को कथा कहानी सुनाने के लिए भी जाया करो, वो भी सत्संग है। कथा कहानी तो कोई भी सुना सकता है, दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, एक बच्चा भी कथा सुना सकता है, लेकिन तत्व का चिंतन मनन, जो ओरिजिनल आत्मा को परमात्मा बनाने का जो वास्तविक रास्ता है, वास्तविक साधना की बातें हैं, वो कौन सुनाएगा? जो कर रहा है, जिसमें डूबा है, उनको उसी से मतलब है और किसी से मतलब नहीं। ऐसा एक साधक जो उतरा हुआ है, जो केवल परमार्थ की दृष्टिकोण से ही अपनी साधना को, समय को समर्पित किया है, जीवन को समर्पित किया है, और जब बोले उनके मुख से तत्व की बातें निकलती हैं, जब विचार आए तत्व के विचार आते हैं, जब पढ़ने के लिए बैठ जाए तत्व ही पढ़ते हैं, जब कुछ करे संवर और निर्जरा का ही कार्य करते हैं। ऐसे साधकों का सत्संग ही असली सत्संग है, और वहां आपको नई नई बातें मिलेंगी। तत्व ज्ञानियों का सत्संग ही असली सत्संग, वहां आपका जीवन बनेगा, वहां प्राण भरेगा, वहां ज्ञान जो अनादिकाल से भूखा प्यासा है वो तृप्त होगा, वहां खुराक मिलेगा, वहां तृप्ति की अनुभूति मिलेगी। और वो मिल रहा है, शुरू हो गया है, इसको कंटिन्यू करना। अब कितना कंटिन्यू कर पाएंगे? अब कोल्हापुर छोड़ करके तो जाएंगे नहीं बाहर, एक चातुर्मास मिल गया इसके उपरांत तो ठीक है, हम तो घर में बैठे हैं, ऐसा नहीं। टाइम निकालना सत्संग करने के लिए तो दौड़ना पड़ता है, आत्मकल्याण मनुष्य बहुत सार्थक बनाना है तो ऐसे घर में बैठने से, परिग्रह की बातें करने से, संसार से जुड़े रहने से काम चलने वाला नहीं है। जाओ संडे संडे प्रवचन तो सुनो, जाओ संडे संडे तत्व चर्चा तो करो, जाओ स्वाध्याय करो, उसमें से प्रश्न निकालो, तत्व चर्चा की करने के लिए जाओ दौड़ो। ये रुचि कहलाती है, ये सत्संग कहलाता है, ये निरंतर चलना चाहिए। ठीक है आप संसार में रहते हैं, संस्कार संसार भी करना है, उसकी एक मर्यादा है, प्रधानता किसको दोगे? जीवन सुधार के लिए प्रधानता दोगे ना, ये शरीर ये संसार ये बातें ये धन ये संपत्ति ये परिवार यहीं रहने वाला है, ऐसे संसार को हमने अनंत बार बसाया है, अनंत बार किया है, अनंत बार छोड़ा है, अब कितनी बार बसाओगे, कितनी बार उसमें उलझे रहोगे? धर्म की प्रधानता, धार्मिक विचारों के लिए महत्व अपने जीवन में आना चाहिए। तो ये मनुष्य पर्याय संसार में जीते जी सार्थक हो सकता है, परिवार में रहते रहते सार्थक हो सकता है, तो कितना करना? तो घर छोड़ना, चिपके नहीं रहना ज्यादा उससे, थोड़ा सा उसकी उपेक्षा करो, उदासीन हो जाओ उससे, थोड़ा अध्ययन करो, तत्वों का अध्ययन, कोई भी ग्रंथ समीचीन ग्रंथ हो उसका अध्ययन करो, आत्मकल्याण के लिए ही पढ़ो, कर्मों की निर्जरा संवर मोक्ष मार्ग इसको ख्याल में रखो, इस पर चलने पर ही मेरा आत्मकल्याण होने वाला है, मैं इसलिए अध्ययन कर रहा हूँ, कर्म निर्जरा के लिए कर रहा हूँ, मुझे कोई ख्याति लाभ पूजा बाहरी दृष्टि नहीं है, मैं ज्ञान बढ़ा रहा हूँ, कल्याण के लिए बढ़ा रहा हूँ, इस प्रकार चिंतनशील होकर के सब काम करो, एक कोई लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य बनने पर फिर ख्याति लाभ पूजा उधर ध्यान नहीं जाता, लक्ष्य बनना चाहिए, आत्मकल्याण करना है और इसमें रस लेना, रस आना चाहिए, उत्तरोत्तर उसका विकास। ऐसा नहीं कि चातुर्मास खत्म हो गया तो उधर गए तो उधर, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, ऐसे हमारे जीवन की प्रवृत्ति नहीं बनना चाहिए। यमुना पर आए हैं, यमुना के पानी को पिया है तो गंगा के पास जाकर के भूलना नहीं, उसके डकार आना चाहिए, फिर गंगा को बता दो मैं यमुना पानी पी करके आया हूँ, वही डकार आ रहा है और वो डकार हमेशा चले। तो गंगा के घाट पर भी यमुना का पानी पीने से कल्याण संभव है। करना है कुछ तो करना है, उसके बिना तो ये व्यर्थ जा रहा है, मनुष्य भव व्यर्थ नहीं गमाना है। प्रतिमा के जो परिणाम बने हैं बहुत अच्छे हैं, स्वागत के योग्य हैं, वो स्वागत करो अपने जीवन में प्रतिमाओं को। जरा कष्ट होगा प्रतिमाओं के संबंध में ही समझाना है, संवर और निर्जरा के कारण समझ में आ गए। देव मूर्ता दोष, कल एक कौन सा हो गया था? लोक मूर्ता दोष हो गया था। देखो ये ध्यान में रखना है, अनायतन को छह प्रकार का दोष बताया है ऊपर पुस्तक में, देखो ग्यारहवीं प्रश्न नंबर 11, अनायतन छह हैं, ये दोष हैं, इन दोषों का नाम ऐसा है कुदेव अनायतन दोष, ये दोष का नाम हुआ, इसको गुण का नाम कैसे बनाए? गुण का नाम भी बनाना है, कैसे बनाए? तो यहां नीचे लिखा है, गुणों के नाम भी लिखे हैं एक के नीचे, वीतराग देव स्वरूप आयतन गुण। तो अनायतन के त्याग से, आयतन के ग्रहण से, आयतन का ग्रहण गुण है और अनायतन का त्याग गुण है और ग्रहण दोष है। अनायतन का ग्रहण दोष है, अनायतन का त्याग गुण है, और त्याग के बाद फिर उसका गुण का नाम कैसे बनाए, तो यहाँ बना के बताया है, वीतराग देव स्वरूप आयतन गुण, वीतराग गुरु स्वरूप आयतन गुण, वीतराग धर्म स्वरूप आयतन गुण, वीतराग देव मान्यता युक्त पुरुष स्वरूप आयतन गुण, वीतराग गुरु मान्यता युक्त पुरुष स्वरूप आयतन गुण, वीतराग धर्म मान्यता युक्त पुरुष स्वरूप आयतन गुण, ये गुण इस प्रकार से बनते हैं। मतलब क्या, तो वीतराग देव स्वरूप आयतन, वीतराग देव क्या है, ये आयतन है, उनकी मान्यता जो हम करते हैं वह आयतन की मान्यता होने से गुण की कोटि में आता है। और वीतराग गुरु स्वरूप आयतन गुण, गुरु कैसे हैं, वो भी वीतरागी यानी परमार्थ में चलने वाले हैं, तो वीतराग गुरु स्वरूप आयतन गुण, ये गुण क्यों हुआ, वीतराग होने से गुण हुआ, वीतराग होने से आयतन हुआ, वीतराग वही होता है जिनके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है, गुणों के कारण से वीतराग होता है, इसलिए गुण बना। वीतराग धर्म स्वरूप आयतन गुण, धर्म कैसा हो, वीतराग हो, रागी जीवों को वीतराग बनने बनाने की क्षमता जिस धर्म में हो उस धर्म को ही सच्चा धर्म कहते हैं, वह भी वीतराग नाम पाता है। तो रागी जीवों को वीतरागता दिलाने वाला जो धर्म है वही आयतन है, और वह धर्म जिसके माध्यम से हम रागी बनते हैं, संसार का ही पाठ सीखते हैं, कोई ध्येय, कोई लक्ष्य, कोई परमार्थ का ज्ञान, कोई आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म साधना का ज्ञान जिस धर्म में प्राप्त नहीं हो पाता उसको हम अनायतन कहते हैं, अनायतन दोष है और आयतन गुण है। ये हाँ, धर्म आयतन कैसे महसूस करे, देखो धर्म यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इसको धर्म कहा, और इनको धारण करने वाले जो होते हैं वो गुरु कहलाते हैं और देव कहलाते हैं। धर्म रत्नत्रय स्वरूप धर्म, धर्म अहिंसा स्वरूप धर्म, रत्नत्रय एक तत्व है, क्या तत्व है, सम्यक दर्शन संवर तत्व है, चारित्र एक तत्व है, कौन सा तत्व है, संवर तत्व है, तप भी एक तत्व है, कौन सा तत्व है, निर्जरा तत्व है, इन तत्वों से बना है रत्नत्रय, संवर तत्व से सम्यक दर्शन और चारित्र का जन्म हुआ, निर्जरा तत्व से तप का जन्म हुआ, यानी तप आया इसलिए निर्जरा, यानी निर्जरा का जन्म तप से और तप का जन्म निर्जरा से हुआ, तो ये धर्म कहलाया, तप हमारा धर्म है, वो चारित्र का अंग है, सम्यक दर्शन हमारा धर्म है, संयम चारित्र धर्म है, तप धर्म है। अब ये कैसा हो, वीतराग हो, वीतराग हो का मतलब क्या, कि आत्मा के रागादि परिणामों को दूर करने में निमित्त भूत हो, तो हमने चारित्र ग्रहण कर लिया तो संवर तो मिलना चाहिए था हमको, संवर मिला, किस कारण से मिला, रागादि भावों को दूर करने पर ही मिला। कितने प्रकार के रागादि भावों को दूर करने पर मिला, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, इन रागादि भावों को दूर करने से ये वीतरागता प्राप्त हो गई, यानी तीन प्रकार से वीतरागता उपलब्ध हो गई, अनंतानुबंधी दोष जाने से, राग जाने से वीतराग, अप्रत्याख्यानावरणी राग जाने से वीतराग, प्रत्याख्यानावरणी राग के जाने से वीतराग, तीन प्रकार से वीतराग हुआ आत्मा। अब इन तीनों के जाने से ही चारित्र धर्म आया, ये चारित्र धर्म कैसा है, वीतराग है, किस अपेक्षा से वीतराग है, तो तीन कषायों की अपेक्षा से वीतराग है, वीतराग है। अब संज्वलन कषाय उदय में है तो रागी भी है, रागी भी है। अब यह राग इस चारित्र का घातक है क्या? नहीं है। छठे सप्तम गुण स्थान में ये जो चारित्र प्रकट हुआ है वो सकल चारित्र है, वो चारित्र धर्म है। तो इस चारित्र धर्म को हम वीतराग बता रहे हैं तो किस अपेक्षा से बता रहे हैं? तो तीन कषायों के अभाव की अपेक्षा से वह वीतराग। किंतु सराग भी है, किस अपेक्षा से सराग है? संज्वलन कषाय का उदय होने से सराग है। अब इसको भी, इस चारित्र को भी वीतराग बनाना है, क्योंकि ये नीचे वाला चारित्र है, इसके ऊपर वाला भी चारित्र है, वो यथाक्यात है। तो यथाक्यात चारित्र का घातक ये संज्वलन ही है। संज्वलन के उदय के कारण से 58 प्रकृतियों का आश्रय और बंद होता है, इसको रोकने की क्षमता यथाक्यात चारित्र में है। तो यथाक्यात चारित्र को अपनाने के लिए, उस वीतराग चारित्र को अपनाने के लिए किस राग को हटाना पड़ेगा? संज्वलन राग को हटाना पड़ेगा। संज्वलन राग को हटाया है इसलिए यथाक्यात चारित्र को वीतराग संज्ञा है। इस प्रकार से धर्मात्मा के पास जो धर्म है उसी धर्म का नाम वीतराग धर्म। उस धर्म के पास कितने प्रकार का राग नहीं है वो विवक्षा कथन है। उस जगह जो विवक्षा लगती है उस विवक्षा के अनुसार उसका कथन करना चाहिए। तो धर्म भी वीतराग है। इसका तात्पर्य क्या? धर्मात्मा को छोड़कर धर्म तो रह नहीं सकता। अलग आकाश में धर्म अलग है और धर्मात्मा उसको ग्रहण करता है, ऐसा नहीं। धर्म क्या है? सप्त तत्वों में धर्मात्मा जो चल रहा है वही धर्म है। सप्त तत्वों में चलते समय कौन कौन से तत्व देखो? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। धर्मात्मा इन्हीं तत्वों में चलता है। धर्मात्मा ये समझता है प्रथम तत्व है जीव तत्व, वही मैं हूं समझ जाता है। उस जीव तत्व को छोड़कर बाकी मैं कुछ नहीं हूं, और मैं जीव तत्व, मैं परिपूर्णतः जीव ही बन गया, अन्य कुछ भी नहीं हूं, तो मैं ही मोक्ष तत्व हूं। सब हटाया बीच के तत्वों को। कितने हटाया? 6 तत्व। कितने? 5 तत्वों को हटाया, मैं जीव बच गया, और बीच के 5 हट गए तो मैं कौन हूं? मैं तो मोक्ष हूं, मैं जीव ही हूं, प्रथम तत्व हूं। और बीच के 5 तत्वों को मेरे में ही थे, वो उनको अलग कर दिया, मैं निर्जरा तत्व भी नहीं हूं। निर्जरा किसकी? कर्मों की। वो मैं हूं क्या? कर्म मैं हूं क्या? नहीं, मैं तो जीव हूं, कर्म मेरे नहीं है। हटाया निर्जरा तत्व भी नहीं हूं। संवर तत्व मैं नहीं हूं, बंध तत्व मैं नहीं हूं। किसका बंध? कर्म का बंध। आश्रव तत्व मैं नहीं हूं, किसका आश्रव? कर्म का आश्रव। तो कर्म ही मैं नहीं हूं, तो इनका आश्रव बंध संवर निर्जरा आदि मैं कैसे हो सकता हूं? मैं नहीं हो सकता हूं। हटाया इनको, मैं नहीं हूं तो इनको हटाया, तो बचा क्या? इसी का नाम मोक्ष है, जहां पर निर्जरा भी नहीं, जहां संवर भी नहीं, जहां बंध भी नहीं, वही तो मैं हूं। मैं यानी मोक्ष हूं। मोक्ष यानी क्या? खाली। किससे खाली? कर्मों से खाली। और जब मैं कर्मों से ही खाली हो गया तो ये तो शरीर तो नो कर्म है, कर्मों के वजह से मिल रहा था मुझे, वो भी गया, मुझ में कुछ नहीं बचा, तो सभी गया। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अरे मेरा सभी शरीर भी गया, सब गया, संपत्ति गई, धन गया, घबराओगे? अरे सबसे बड़ी संपत्ति तुमको मिल गई, लोक्ष मोक्ष लक्ष्मी मिल गई, आने के बाद कभी जा नहीं सकेगी, अनंत 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 सुख देगी, अनंत काल तक रहेगी, साथ रहेगी, वो मोक्ष तत्व है। वो मोक्ष तत्व को हमने आज तक नहीं पाया, उसका विचार भी नहीं किया, उसका चिंतन भी नहीं किया, वो पढ़ने में भी नहीं आया और सोचने में भी नहीं आया। ऐसा आएगा क्या? तुम बैठे रहो घर में और आएगा ऐसे ऐसे। जाना पड़ेगा। दो पांव हैं, दो हाथ हैं, दो कान हैं और दो आंख हैं, इनका सदुपयोग करो। इंद्रियां मिली हैं किस लिए? आर्यखंड में जन्मने के बाद ये इंद्रियां किस लिए मिली हैं? आंखें शास्त्र पढ़ने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए मिली है, भोगों के लिए नहीं, टीवी देखने के लिए नहीं। दुरुपयोग कर रहे हो। लगना चाहिए ऐसा अंदर आत्मा में, ऐसे विचार आने लग जाए और अपने आप को लगने जाए कि मैं गलत कर रहा हूं, तो फिर परमार्थ की रुचि जग जाती है, सवेरा हो जाता है, सूरज की प्रथम किरण लाल किरणें फूटती है। उस शांत वातावरण में घूमो जरा, ऑक्सीजन बहुत रहता है। सुबह ही नहीं हुआ तो ऑक्सीजन कहां से आएगा? बहुत सो रहे हैं अनादिकाल से, कितने सोए हुए हैं हम, कितने प्रमादी हैं। क्या करन, क्या किए? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बहुत प्रमादी बन के बैठे। आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, खुद के लिए कुछ नहीं किया, पर में उलझकर पर ही बन के बैठे। इसलिए जैन दर्शन ने दो बात स्वीकार की, अनेकांत की दृष्टि में, अनेकांत के दृष्टि से दो बातों को स्वीकारा उन्होंने। यह आत्मा चेतन होकर के भी अचेतन है, दोनों बातें स्वीकार करी। जब स्वयं को भूलकर पुद्गल में, पुद्गलमय होकर पुद्गल में अटक जाते हैं, तो अपने पांचों इंद्रियों का दुरुपयोग हो जाता है। दुरुपयोग हो गया, बाहर गए, बाहर अटक गए, बाहर ही भटक गए। तो ये इंद्रियां जो प्राण हैं, मिले हैं पांच इंद्रियां, एक मन, मनोबल, वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास, आयु, ये पांच प्राण, पांच इंद्री प्राण, मनोबल, वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास, आयु, ये पांच, ये दस प्राण हैं संसारी जीव के पास। इन प्राणों का दुरुपयोग, आर्यखंड में जन्म लेकर इनका दुरुपयोग ठीक नहीं। फिर दोबारा कभी आर्यखंड मिलने वाला नहीं। आर्यखंड इसलिए मिला था कि आप सदुपयोग करेंगे, इसलिए परीक्षा हेतु थोड़ा सा टेस्ट, आठ में से एक इस बार करता है कि देखेंगे, चलो एक देते हैं, दे दिया उसने, कर्म ने दे दिया। कर्म भी बड़ा उपकार करता है कभी कभी। शुभ कर्म के उदय में हम आर्यखंड के मनुष्य बन गए, आयु कर्म ने, गति नाम कर्म ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। पर परीक्षा ले रहा है वो, देखता हूं कितने साल पर में उलझा रहता है, बाहर बाहर भटकते भटकते बाहर बाहर ही रह जाता है। तो कर्म कहता है अब के बार इसको बहुत समय तक द्विंद्रिय आदि पर्याय में रखेंगे, और बहुत समय तक म्लेच्छ खंड आदि में रखेंगे। मनुष्य भी बना तो म्लेच्छ खंड के मनुष्य ही बनाएंगे हम इसको, इसको आर्यखंड के मनुष्य बनने ही नहीं देंगे। पनिशमेंट, हाँ पनिशमेंट देता है वो। ये सामान्य नहीं, आप समझो, ये पांच इंद्रियां मिली हैं, इनका दुरुपयोग नहीं करना है। दो प्रतिमा लेकर जीवन का कल्याण करना ही है, ठान लो हो जाएगा। सुलभ मार्ग हैं, सुलभ रास्ते हैं, अनेक बहाना मत बनाओ, मन को कमजोर बना करके मत सोचो ये नहीं होगा, वहां जाएंगे, वहां जाना पड़ता है, यहां कहीं भी जाना पड़ता हो, कहीं दोष लग जाए, प्रायश्चित लेंगे, लेकिन करेंगे, घर में तो करेंगे ही हम। बहाना नहीं बनाना, डरना नहीं उससे। भ्योन का संयम धारण करा, वो कह करके चले गए, हम और धैर्य दिला रहे हैं। तो मानसिकता बना लो, प्रतिमा का स्वरूप समझाएंगे, मूर्ता का स्वरूप समझाया, प्रतिमा का स्वरूप कल से समझाया जाएगा।